તારીખ 31/8/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 40 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 698
રાજચંદ્ર વચનામૃત 40માં પત્ર ચલતા હૈ ક્યા બાત ચલતી થી કલ આખિર મેં કે રાગ દ્વેષ ઓર મોહ ઇન તીન દોષો સે રહિત જો તીર્થંકર દેવ હૈ મહા અતિશયવંત હૈ પ્રતાપી પુરુષ હૈ ધર્મ કા ઉપદેશ ઉન્હોંને દિયા હૈ કૈસા ધર્મ કા ઉપદેશ દિયા હૈ કે મોક્ષ કે કારણ રૂપ ધર્મ કા ઉપદેશ દિયા હૈ ઉસ ધર્મ કો કોઈ ભી જીવ સ્વીકાર કર સકતા હૈ ચાહે જો મનુષ્ય કે અતિરિંચ ભી સ્વીકાર કર સકતા હૈ કોઈ ભી જીવ સ્વીકાર કર સકતા હૈ દેવ ભી સ્વીકાર કર સકતા હૈ નારકી ભી સ્વીકાર કર સકતા હૈ તો ઇસકા મતલબ યે હુઆ કે કિસી કી કોઈ અધિકાર કી ચીજ વો નહીં હૈ કે હમ જૈન હૈ ઇસલિયે યે હમારા ધર્મ હૈ જો દૂસરે સંપ્રદાય વાલે આતે હૈ ઇનકા કોઈ અધિકાર નહીં એસી બાત નહીં હૈ કિસી ભી જીવ કા અધિકાર હૈ કે વો તીર્થંકર દેવ કા ધર્મ કા સ્વીકાર કરે ક્યું કે વો જીવ કો લક્ષ મેં લેકર કે બાત કરતે હૈ કિસી સંપ્રદાય કી વ્યક્તિ કો લેકર કે બાત નહીં કરતે કોઈ ભી જીવ હો ઇનકા સ્વભાવ એસા હૈ ઇનકા વિભાવ એસા હૈ કિસી ભી જીવ કો દુઃખ કા યે કારણ હૈ સુખ કા યે કારણ હૈ કિસી કો ભી સુખી હોના હો વો સમજ કરકે અપને આપ સુખી હો સકતે હૈ તીર્થંકર દેવ કા ધર્મ જિનેન્દ્ર દેવ કા ધર્મ વો ભી નિમિત્ત સે કથન હૈ વાસ્તવ મેં ધર્મ જો પાલે યા ગ્રહણ કરે ઇસકા હી હૈ ધર્મ કિસકા હૈ કે જો ધર્મ કરે ઇસકા હૈ એક અંગત ચીજ હૈ વો કોઈ સમષ્ટિગત ચીજ નહીં હૈ વો કિસી કી ભાગીદારી કી ચીજ હૈ કિસી કી મજમૂ કી ચીજ હૈ એસી બાત નહીં હૈ જૈસે પાપ કરે ઉસકા પાપ હૈ પુણ્ય કરે ઉસકા પુણ્ય હૈ વૈસે ધર્મ કરે ઉસકા ધર્મ હૈ ઇસલિયે ચાહે જો મનુષ્ય હૈ યા કોઈ ભી જીવ હૈ ઉસકો સ્વીકાર કર સકતે હૈ ઉસકો અંગીકાર કર સકતે હૈ સબો કા અધિકાર એક સરીખા હૈ કિસી કા અધિકાર જ્યાદા હૈ ઓર કિસી કા અધિકાર કમ હૈ સો બાત ભી નહીં હૈ ઓર વો એક પદ્ધતિ હોની ચાહીએ ઇસમે દો પદ્ધતિ હોની નહીં ચાહીએ ક્યું કે યે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ હૈ ઉસમે દો પદ્ધતિ નહીં ચલતી હલવા હલવા કી પદ્ધતિ સે બનતા હૈ રોટી રોટી કી પદ્ધતિ સે બનતી હૈ ચાવલ ચાવલ કી પદ્ધતિ સે બનતા હૈ દૂસરી પદ્ધતિ સે યે બન નહીં સકતા વૈસે ધર્મ ભી એક હી પદ્ધતિ સે બન સકતા હૈ દો પદ્ધતિ સે ધર્મ નહીં બન સકતા ફિર ભી અનેક પદ્ધતિ સે अनेक मनुष्य उस धर्म का प्रतिपादन करते हो या कर रहे हैं, और वह मनुष्यों में परस्पर मतभेद का कारण होता हो। क्यों? कि सब यही कहेंगे कि हमारी पद्धति सही है। क्या कहेंगे? कि हम जो पद्धति से धर्म करते हैं वही पद्धति सही है, दूसरी पद्धति नहीं होनी चाहिए। और परस्पर में फिर ऐसे आरोप किए जाते हैं कि हमारी पद्धति सम्यक है और दूसरों की पद्धति मिथ्या है। हाँ, चलता है कि नहीं चलता है? जैसे मुख्य भेद तो दो है वर्तमान में, श्वेतांबर और दिगंबर। फिर इनके भेद प्रभेद में अपन नहीं जाएंगे कि श्वेतांबर में कितने भेद हैं, दिगंबर में कितने भेद हैं। मुख्य तो दो भेद हो गए। अब दिगंबर कहेंगे कि श्वेतांबर ग्रहित मिथ्या दृष्टि लोग हैं, श्वेतांबर कहेंगे कि दिगंबर लोग ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। हाँ, वही चलता है ना। ऐसा परस्पर मतभेद हो, मतभेद का कारण बनता है, विभिन्न पद्धति है वो मतभेद के कारण से हुई है, तो उसमें तीर्थंकर देव की एक पद्धति का दोष नहीं है। क्या? तीर्थंकर देव ने जो पद्धति अखत्यार की, अखत्यार की मैंने खुद ने वो पद्धति से काम किया और उस पद्धति को दिव्य ध्वनि में जाहिर भी किया, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जिसने विकृति अंगीकार कर ली, फेरफार कर लिया, उनका दोष है। मूल पद्धति वालों का कुछ दोष नहीं है, परंतु उन मनुष्यों की समझ शक्ति का दोष माना जा सकता है। वो दोनों क्या कहेंगे? कि जैसा हम करते हैं कहते हैं वैसा तीर्थंकर देव ने कहा और किया। दोनों ऐसा ही कहेंगे। उसमें जो भी विकृत है उसकी समझ, विकृति जिसमें आई उसकी समझ शक्ति का दोष है। मूल पद्धति जो है सो है, विकृति वालों का दोष है, उसकी समझ शक्ति का दोष है। इस तरह हम निर्ग्रंथ धर्म प्रवर्तक है। अब एक प्रश्न यहाँ हो सकता है कि जब किसी मनुष्य की समझ शक्ति का दोष हो गया तो तीर्थंकर देव ने उसको समझाया क्यों नहीं, कि आपके ये समझ में गलती हुई है, ऐसा क्यों नहीं कहा? है, तीर्थंकर देव है वो वीतराग पुरुष हैं। कैसे हैं? वीतराग पुरुष हैं, इसलिए वो समष्टिगत उपदेश देते हैं। व्यक्तिगत उपदेश देने का प्रसंग तीर्थंकर देव को नहीं होता। अभी तीर्थंकरों का जमाना नहीं रहा, लेकिन शास्त्र में जो बात है उसमें ऐसी बात है कि समोसरण के मध्य में गंधकुटी के ऊपर तीन पीठिका गंधकुटी की होती है, उसके ऊपर कमलासन में अंतरिक्ष में बिना किसी के आधार, थोड़ा अवकाश बीच में रहता है। तीर्थंकर देव समोसरण की सभा से 500 धनुष ऊंचे विराजमान होते हैं। कितने? 500 धनुष ऊंचे विराजमान होते हैं। मैंने करीब आधा किलोमीटर हो गया, एक एक धनुष को एक मीटर बना बराबर ले ले, एक मीटर से ज़्यादा कुछ होता होगा, 7 फुट का बताया जाता है, फिर भी आधा किलोमीटर तो हो ही गया। इसलिए पर्सनल व्यक्तिगत बात करने का डिस्टेंस भी नहीं है वहाँ, और नज़दीक कोई जा सकता नहीं, लेकिन जाए तो भी वो व्यक्तिगत बात करे, इतना राग विकल्प तीर्थंकर देव को होता नहीं। संपूर्ण वितरागता होने से वो संपूर्ण रूप से ध्यानस्थ अवस्था में विराजमान रहते हैं, ध्यान से बाहर निकलते नहीं वो, और उसका उपयोग भी बाहर जब नहीं जाता तब किसी से बात करने का प्रसंग आए वो बात तो रहती नहीं। और उनका जो उपदेश चलता है दिव्य ध्वनि में वो भी अक्षरात्मक वाणी से नहीं चलता, जैसे हम बात करते हैं ऐसी वाणी नहीं होती, वो ओमकार ध्वनि होती है, ओमकार नाद गूंजता है, समोसरण में ओमकार नाद गूंजता है, वो भगवान के योग के या आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन के निमित्त से ये अपने आप चालू होता है और अपने आप बंद होता है। वो ओमकार नाद प्रकट करने का भी तीर्थंकर देव को भाव नहीं होता है, विकल्प नहीं होता है, राग नहीं होता है, वो अपने आप होता है इच्छा बिना। और महाभाषा और लघु भाषा में सब अपने अपनी भाषा में वो समझ लेते हैं कि भगवान का उपदेश ऐसा चल रहा है, ऐसा सबको समझ में आ ही जाता है, ट्रांसलेशन अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता, कराना नहीं पड़ता, ऐसा अतिशय है। इसलिए अगर किसी की समझ शक्ति का दोष होता है तो उसके लिए तीर्थंकर कुछ करते नहीं, कराते नहीं, करवाते नहीं। ऐसी एक परिस्थिति रही जिसके कारण से समझ शक्ति का दोष ही रहा, और उस दोष को, उस समझ शक्ति को अनुसरण करने वाले अधिक हो जाने से इनका भी एक अलग कार्य पद्धति वाला संप्रदाय चालू होने लगा। वो बात वर्तमान 24 में ऋषभदेव भगवान से समय से एक कोड़ा कोड़ी सागर के पहले पहले ही चालू हो गई है। अभी तो उसके बाद तो दिन प्रतिदिन काल उतरता आया और समझ शक्ति के फेरफार वाले लोग ज़्यादा होने लगे, और आज परिस्थिति ये रही कि जैनियों की संख्या बहुत अल्प हो गई और अन्य मतियों की संख्या बहुत बड़ी हो गई, ये लघुमती में आ गई है और उन लोगों की बहुत बड़ी संख्या हो गई। ये काल अनुसार है, पंचम काल हो गया और उत्तरता काल हो गया, हुंडा अवसर्पिणी काल है, उसमें भी हुंडा अवसर्पिणी काल है, जैनियों में भी आपस में फाट फूट, तकरार, झगड़ा, क्लेश बहुत चला, और वही गिरने का, अवनति होने का मुख्य कारण भी बना है। बात रही समझदारी की, परिस्थिति कुछ भी हो, हमारा ऐसा सौभाग्य है कि तीर्थंकर देव की मूल बात हमारे सामने आई है। हम अगर इसका, इस मौके का लाभ उठाकर हमारा आत्मकल्याण कर लें, कर सकते हैं और कर लें, तो हमारी समझदारी है, अगर होम नहीं करे और झगड़े टंटे में फंसे रहे तो ये हमारी समझ शक्ति का दोष है और कुछ नहीं। इसलिए कहीं भी ऐसे मामलों में फंसाना नहीं चाहिए। इस तरह हम निर्ग्रंथ धर्म प्रवर्तक है। क्या है? हम लोग जो है वो निर्ग्रंथ धर्मात्माओं का और तीर्थंकरों का जो धर्म है उसका उसकी प्रवृत्ति करने वाले को प्रवर्तक कहते हैं। उसकी प्रवृत्ति करने वाले हैं यो भिन्न भिन्न मनुष्य कहते हो सब ऐसा ही कहेंगे क्या? हम भी निर्ग्रंथ धर्म प्रवर्तक, हम भी तीर्थंकर का धर्म की प्रवृत्ति करते हैं। हमें यो भिन्न भिन्न मनुष्य कहते हो तो उनमें से उन मनुष्यों को प्रमाण अबाधित गिना जा सकता है कि जो वीतराग देव की आज्ञा के सद्भाव से प्ररूपक और प्रवर्तक हो। क्या कहा? कि सब ऐसा ही कहेंगे। ऐसे कहने वालों में उन मनुष्यों को प्रमाण से अबाधित गिना जा सकता है, मैंने प्रमाणित किया जा सकता है। कौन? किसको? कि जो वीतराग देव की आज्ञा के सद्भाव से प्ररूपक हो और आज्ञा के सद्भाव से प्रवर्तक हो, उपदेश भी ऐसा करे और प्रवृत्ति भी ऐसी करे, उनको प्रमाणित करना चाहिए, दूसरे को प्रमाणित नहीं करना चाहिए। यह काल दुष्म नाम से प्रख्यात है। अब क्या हुआ कि कृपालु देव ने कोई फाइनल जजमेंट नहीं दिया कि वो लोग ठीक है वो लोग ठीक नहीं है। ऐसा आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया? बात ऐसी है कि दोनों संप्रदाय में विकृतियां तो बहुत आ गई है। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष पधारे 2500 साल से अधिक समय हो गया। इतने साल में 2500 साल में बहुत विकृतियां आई। तो किसी भी संप्रदाय को थ्रू आउट मान्य करने की बात तो वर्तमान परिस्थिति में है ही नहीं। इसलिए उन्होंने ये बात स्पष्ट नहीं की। कुछ स्पष्ट किया तो उतना ही किया कि ज्ञानी के मार्ग से मार्ग पे चलो, वही तीर्थंकरों का मार्ग है, वो बात स्पष्ट किया है, उसमें गोलमोल नहीं रखा है। ज्ञानी माने क्या? कि जो आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं वही तीर्थंकर देव के मार्ग में प्रवेश उन्होंने किया है और वही अंततः निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे, वही मोक्ष में जाएंगे। बाकी जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ हो वो कितने भी शास्त्रविद हो या कितने भी त्यागी हो या मुनि हो या कुछ भी हो, कोई भी पद धारण करने वाले हो, जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो तीर्थंकर देव के मार्ग में नहीं है, वो बात स्पष्ट है, वो बात उन्होंने स्पष्ट किया है। इसलिए मुमुक्षुओं को भी उन्होंने आत्मज्ञान का उपाय बताया, आत्मज्ञान प्राप्त करने की योजना बताई और उसी मार्ग पर चलने के लिए उपदेश दिया, वो बात बनी है और वो बात स्पष्ट है। हाँ स्पष्ट कर दिया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में विकृतियाँ बहुत है तो लोग नाराज होंगे, जो विकृतियों वाले संप्रदाय तो है ही, तो तीनों संप्रदाय, दोनों संप्रदाय, जो भी जितने भी संप्रदाय, सब बहुत नाराज होंगे। वो पुण्यवंत थे तो इतना तकलीफ नहीं पाए, बाकी पुण्य कम हुए तो बहुत तकलीफ पाते हैं उसमें, यानी बहुत झगड़े टंटे में फंसना पड़ता है। जबकि मतलब है मूल मार्ग के, कि मूल मार्ग कैसा है, वो मार्ग समझ में आ जाए और वो उपाय में जीव लग जाए तो आत्मकल्याण तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल करना होता है, कोई सामूहिक रूप से आत्मकल्याण होता है ऐसा नहीं होता है। हाँ सत्संग आदि प्रवृत्ति, स्वाध्याय की प्रवृत्ति सामूहिक होती है, फिर भी सामूहिक प्रवृत्ति में भी व्यक्तिगत रूप से उपदेश को अंगीकार करने का काम करना होता है, उसमें कोई सामूहिक काम नहीं होता है। हर एक को अपना व्यक्तिगत समझ करनी पड़ती है, व्यक्तिगत आगे बढ़ने का होता है, व्यक्तिगत सुधार करना होता है, और बिगाड़ होता है तो भी व्यक्तिगत ही होता है। जैसे तीर्थंकर देव के समूह शरण में तो सामूहिक सुनते थे, सब समूह में सुनते थे, फिर भी जिसका सुधार हुआ वो भी व्यक्तिगत हुआ और बिगाड़ हुआ वो भी व्यक्तिगत हुआ। आखिर में तो बात व्यक्तिगत रूप में आ जाती है, ऐसा समझ करके अपने आप को, स्वयं को संभालना पड़ता है, हर एक को अपने आप को संभालना पड़ता है। यह काल दुष्म नाम से प्रख्यात है, ये दुष्म काल है, ये बात तो प्रसिद्ध है। दुष्म काल उसे कहा जाता है, किस कारण से कहा जाता है, कि जिस काल में मनुष्य महादुख से आयु पूर्ण करते हो और धर्म आराधना के पदार्थों का प्राप्त करने में दूषमता अर्थात महाविघ्न आते हो। क्या है कि एक तो लोग ज़्यादा दुखी होते हैं, मनुष्य इस लोक में ज़्यादा दुखी होते हैं, इस काल में बहुत आकुलित होते हैं, और वितराग धर्म के प्राप्त करने में जो साधन होने चाहिए वो साधन बहुत अल्प मिलते हैं, और जो भी मिलते हैं उसमें विघ्न बहुत आते हैं। मिलने वाले को बार बार अंतराय कर्म का सामना करना पड़ता है, कुछ न कुछ अंतराय आ ही जाता है, ऐसा बन जाता है। इसलिए इस काल को दुष्म काल बोलने में आता है, माने दुर्लभता से धर्म प्राप्त करने की परिस्थितियां रहती है, ऐसे काल को दुष्म काल कहने में आता है। हाल में वीतराग देव के नाम से जैन दर्शन में इतने अधिक मत प्रचलित है, प्रसिद्ध है, कि वे मत केवल मत रूप है, वह मत केवल मत रूप है, परंतु जब तक वीतराग देव की आज्ञा का अवलंबन करके उनका प्रवर्तन न होता हो तब तक वे सतरूप नहीं कहे जा सकते। मत और सत का एलिटरेशन लिया है, भाषा अलंकार, भाषा में अलंकार करने की एक पद्धति होती है, वो तो ग्रामेटिकल बात है, फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं जिसको, तो वो तो कवि थे और विद्वान भी थे, बहुत ज्ञानी भी थे और विद्वान भी थे, तो बहुत जगह भाषा अलंकार करते हैं। तो कहते हैं कि जो केवल मत है वो सत नहीं, और सत है वो केवल मत नहीं। वर्तमान में ये परिस्थिति है कि हाल में वितराग देव के नाम से जैन दर्शन में विभिन्न प्रकार के इतने अधिक मत प्रचलित हो गए हैं कि वे मत केवल मत रूप हैं, मतलब उसमें कोई सत नहीं है। मत है किंतु उसमें कोई सत नहीं है, इसलिए उन्होंने वो बात नहीं फाइनल किया, समझे? कारण वो है, ये सब मत है, सत नहीं रहा वहां, क्या कहे? आज कोई ज्ञानी सही प्रवृत्ति कर देंगे तो वही लोग हमला करेंगे, वही लोग हमला करेंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं? चलो इनके शास्त्र जला दो या पानी में बहा दो, हाँ, मूर्ति का विरोध करो, शास्त्र का विरोध, अरिहंत प्रतिमा का विरोध हुआ, आचार्यों के शास्त्रों का विरोध हुआ, और वो इन लोगों ने किया है, और गुरुदेव पर प्रहार भी हुआ है। इंदौर में तो गाड़ी के कांच फोड़ डाले थे, पत्थरबाजी भी किए थे, लाठी चार्ज भी किए थे, सब कुछ हुआ था, मार नहीं पड़ा लेकिन गड़बड़ तो बहुत हुई थी। तो क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये सब ठीक नहीं चल रहा है, गड़बड़ है सब, वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कौन कहने वाले, हमारे विरुद्ध ऐसा क्यों बोलते हो, आपको क्या अधिकार है? अगर ऐसा बोलेंगे तो हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो बात चलेगी चलेगी, चली भी। बहुत पुण्य लेकर आए थे तो भी ऐसा हुआ है, तो भी ऐसा हुआ है। कभी कभी पुण्य के साथ पाप का भी उदय आ जाता है, लेकिन ज्ञानी कभी द्वेष करते हैं नहीं। कोई भी कैसी भी प्रवृत्ति करे, ये निशानी है कि ज्ञानी कभी द्वेष नहीं करते, ठीक है। एक प्रकार का उदय इस कोने में चलता है, दूसरे कोने में उस प्रकार का उदय चलता है। कुछ लोग अनुकूल चलते हैं, कुछ लोग प्रतिकूल चलते हैं, और ऐसा हमेशा चलता रहेगा। हमारे कोई इससे वास्ता नहीं, ना अनुकूल वालों से वास्ता है, ना कोई प्रतिकूलता वालों से भी हमारा वास्ता है। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं, जाओ, वो अपने काम में लगे हैं और अपने रास्ते पे निर्भीक रूप से चले जाते हैं। अपने रास्ता का वो कभी त्याग नहीं करते और न कभी डरते भी हैं किसी से, ऐसा होता है। वो ये केवल मत रूप है परंतु सतरूप नहीं कहे जा सकते, कब तक? कि जब तक वो वितराग देव की आज्ञा का अवलंबन करके उनका प्रवर्तन नहीं होता हो, तब तक वो सतरूप कहे नहीं जा सकते, वो सत नहीं है। सत नहीं है तो झूठ है, वो बात मिथ्या है, वो बात आ गई। और धर्म एक परम प्रयोजनभूत विषय होने से, धर्म है वो परम प्रयोजनभूत विषय होने से, इसमें जो सत का अभाव है तो वो मत ग्रहित मिथ्यात्व के अलावा और कुछ नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व कहो, ए जैन कहो, दोनों एक ही बात है। बात तो वो हो गई है, वर्तमान में संप्रदायों की बात वो हो गई। जैन के नाम से चलता है लेकिन जैन नहीं है, ऐसी बात है। अब कितना कितना चोट लगे ऐसी बात है। जी समझना पड़ेगा, वितराग देव की आज्ञा को समझना पड़ेगा। और वितराग देव की आज्ञा आत्मज्ञान करने की है। जैन दर्शन में ऐसी आमनाई है, आमनाई मैंने आज्ञा, भगवान की आज्ञा ऐसी है। बात लिखते हैं पंडित टोडरमल जी साहब, आज तो दिगंबर संप्रदाय वाले, वो दिगंबर संप्रदाय के बहुत प्रखर विद्वान हुए, आचार्य जैसे विद्वान हुए, इसलिए आचार्य कल्प बोला जाता है पंडित टोडरमल जी को। बहुत तगड़ा क्षोभ्रम था, बहुत तगड़ा। तो आज के जागी लोग उनको मानते नहीं हैं, वर्तमान के जैन धर्म के जो दिगंबर साधु हैं उनको मान्य नहीं करते, तो उन्होंने साफ साफ बातें लिखी। बहुत जैनावासी मिथ्या दृष्टियों का एक बहुत लंबा चौड़ा सातवां प्रकरण लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उसमें सब पोल खोल दी सबों के, तो लोग मानते नहीं। दर्शन में मैंने भगवान के मार्ग में तो यही एक आज्ञा है कि सबसे पहले मनुष्य को तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। तत्व ज्ञान का अभ्यास करके फिर तत्व दृष्टि पूर्वक अपनी शक्ति अनुसार त्याग करना चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं करते हैं तो भगवान की आज्ञा को नहीं मानते, आमनाई को नहीं मानते। तो बहुभाग देखो कि दिगंबर संप्रदाय में जो पुराने आचार्य और ज्ञानी हुए, जगत का सर्वोत्कृष्ट तत्व उन्होंने प्रतिपादन किया है अपने ग्रंथों में। पूछो तो किसी को मालूम नहीं है, कोई स्वाध्याय करते ही नहीं अपने ग्रंथों का, बस पूजा भक्ति दर्शन दान वो यात्रा जप तप करके त्याग व्रत करके, मालूम ही नहीं। सम्यक दर्शन क्या चीज है वो साधु होने के बाद भी मालूम नहीं, तो गृहस्थों को तो टाइम ही क्या है, उन लोगों तो पेट की इतनी पड़ी है कि सारे दिन पैसा कमाने के पीछे लग जाते हैं, बड़े बड़े व्यापार धंधा में इतने फंसे हुए हैं कि किसी को ग्रंथ पढ़ने का समय ही नहीं है। जो निवृत्त हो गए त्यागी हुए उनको भी पता नहीं है, वो भी इतने अध्यात्म ग्रंथ पढ़ते नहीं। ये समय साथ तो गुरुदेव ने बाहर निकाला सम्यक दर्शन का ग्रंथ, वो लोग में तो ये पद्धति हो गई थी कि ये तो ग्रंथ गृहस्थों को पढ़ने लायक है ही नहीं, अलमारी में रख दो, ये परिस्थिति थी। तो गुरुदेव ने निकाला इसको बाहर, बाकी कोई आत्मा की बात ही नहीं करे, ये छोड़ो, ये ताक करो, व्रत ले लो, ये करो, पचकांड दे दो, वो कर दो, वो कर दो, बात खत्म, दीक्षा ले लो, ज्यादा आगे जा करके दीक्षा ले लो। तो ये ऐसा संप्रदाय में तो सब ऐसी चलती है, उसमें वितराग देव की आज्ञा का पालन करने की तो बात रही नहीं। जबकि हमने पुराने दिगंबर मंदिर देखे, जहां भी गए, उदयपुर में, जयपुर में, यूपी में, कहीं भी, तो वहां सब जगह शास्त्र है, मंदिर जी में शास्त्र भंडार होते हैं करीब करीब, और शास्त्र पढ़ने की अलग व्यवस्था भी वहां है, अलग बैठ करके चौकी वोकी रखते हैं, सब आप पढ़ सकते हो बराबर, लेकिन कोई शास्त्र की स्वाध्याय पद्धति का लोप हो गया और वैसे ही सब क्रियाकांड में आगे, जहाँ मूल तत्व है वहाँ भी नहीं है, तो दूसरी जगह तो अपेक्षा रखना, वो अपेक्षा ही कहाँ से रखेंगे कि दूसरी जगह कुछ स्वाध्याय हो, तो कहीं भी तत्व ज्ञान का अभ्यास है ही नहीं। तत्व ज्ञान का अभ्यास की परंपरा गुरुदेव ने जागृत की और गांव-गांव में आज भी स्वाध्याय थोड़ा बहुत चलता है, अनेक गांवों में चलता है, वो भी दिन प्रतिदिन, वो भी डाउनफॉल में आ ही रहा है। ये परिस्थिति फिर चालू हो गई है, पूजा भक्ति वाले सब विधि विधान में चढ़ जाते हैं, जो मूल संप्रदाय में जो बात थी वही बात में सब लगने लगे। तो इसलिए कहते हैं कि ये काल दुष्म काल है। इस मत प्रवर्तन में इतने मुख्य कारण मुझे संभाव्य लगते हैं, ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न मत हो गए, उसके कारण क्या बना, क्यों ऐसा हुआ, तो अपने अवलोकन से या तुलनात्मक दृष्टि से कुछ बातें उन्होंने जो लिखी है, वो तो 8 बात लिखी है नीचे, और एकदम सत्य लिखी है और बहुत गहरा उपयोग से और विशाल बुद्धि से और तीक्ष्ण बुद्धि से ये सब बातें लिखी हैं। अपनी शिथिलता के कारण कितने ही पुरुषों ने निर्ग्रंथ दशा की प्रधानता कम कर दी हो। क्या है? अपनी शिथिलता के कारण। निर्ग्रंथ में तो क्या है, अंतर बाह्य कहीं भी ग्रंथि नहीं हो, तो शिथिलता का प्रारंभ हो गया श्वेतांबरों से, उन्होंने वस्त्र पात्र सब अंगीकार करने लगे, कहीं धर्म के साधन बना दिए परिग्रह की वस्तुओं को। जो दिगंबर रहे उनमें भी शिथिलाचरण आ गया और वो भी जंगल को छोड़ करके गांव में रहने लगे और कहीं प्रकार के छोटे मोटे साधन को अंगीकार करने लगे। शास्त्र में जो मुनि दशा की चर्या है वो चर्या बिल्कुल अब नहीं रही है। वस्त्र नहीं पहनते वो बात जरूर है, उतना बड़ा फेरफार तो कर ही नहीं सकते, लेकिन छोटा मोटा फेरफार तो उन लोगों ने भी कर दिया है, वो अपनी शिथिलता के कारण किया है। पर कुछ तो बहुत शिथिल हो गए हैं, वो तो फिर लौकिक प्रवृत्ति में भी चले गए हैं, क्योंकि मुनियों को लौकिक प्रवृत्ति बिल्कुल निषिद्ध है, फिर भी बहुभाग दिगंबर मुनि भी लौकिक प्रवृत्ति में लग गए हैं। वो अपनी शिथिलता के कारण कितने ही पुरुषों ने निर्ग्रंथ दशा की प्रधानता कम कर दी, इसकी मुख्यता नहीं रखी, ऐसा भी चल सकता है, ऐसा भी चल सकता है, ऐसा भी चल सकता है। परस्पर दो आचार्यों का वाद विवाद ये चालू हो गया है, इस कारण से भी आचार्यों को तो मानने वाले होते हैं, तो फिर इसके इसका संख्या अलग, इसकी संख्या अलग हो गया, दो मत, दो संप्रदाय। मोहनीय कर्म का उदय और तद अनुरूप प्रवृत्ति हो जाना, ये दर्शन मोहनी का उदय हुआ। क्या हुआ? जब मूल निग्रंथ बात से च्युत हो गए, निग्रंथ मार्ग से च्युत हो गए, तो सबसे पहला जो दोष होता है वो दर्शन मोह का होता है, वो दर्शन मोह का उदय में उसके अनुसार प्रवृत्ति होने लगी, तद्रूप प्रवर्तन हो जाना। चौथा, ग्रहण करने के बाद उस बात का मार्ग मिलता हो तो भी उसे दुर्लभ बुद्धिता के कारण ग्रहण न करना, क्या है, भूल से मानो के अन्य मार्ग को ग्रहण कर लिया, विकृति को ग्रहण कर ले, उसके बाद इसका मार्ग मिलता हो यानी कोई रास्ता निकलता है तो भी उसे दुर्लभ बुद्धिता के कारण ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि फिर प्रेस्टीज पॉइंट आ जाता है, नाक का सवाल हो जाता है कि हम तो इतने बड़े साधु, इतने बड़े आचार्य, अब हम कहें कि ये हमारी गलती है, ये कहाँ से हो सकता है। इस विषय में गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत अपने जीवन से प्रसिद्ध कर दिया। गुरुदेव का जन्म स्थानकवासी जैन संप्रदाय में हुआ। जब उनको मालूम पड़ा कि ये हमने जो ग्रहण किया है वो बात बराबर नहीं है, मार्ग तो कोई और है, तो उस संप्रदाय में उनकी प्रतिष्ठा, मान, पूजा बहुत थी। इनके बराबरी में कोई की नहीं थी, ऐसे थे इस जमाने में। तो फिर भी जब उनको मालूम पड़ा कि ये मार्ग नहीं है तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया, मान प्रतिष्ठा को बीच में वो नहीं लाए। संप्रदाय के सभी लोग अनुसरण करते हुए विरुद्ध हो गए, जो उनके अनुसरण करते थे ऐसे हजारों लाखों लोग विरोध में आ गए। उनके संग में इन्हें गिने चार व्यक्ति थे, कितने, चार जने थे, दो बढ़वान के थे और दो राणपुर जो हमारा नेटिव प्लेस है वहाँ के दो थे, चार ही लोग साथ में रहे, सब विरोध में आ गए और जान का जोखिम भी हो गया कि मार डालो, वहां तक की बात चल गई थी। आयु भी था और पुण्य भी था तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो संप्रदाय छोड़ करके सोनगढ़ में स्थिर हो गया और वहां अपनी साधना में लग गए। पुण्य योग था तो बहुत लोग आने लगे और एक जमाना ऐसा आया कि सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में से लोग आने लगे। इधर पूर्व में देखो तो गुवाहाटी और इम्फाल से लोग आते थे, इधर उधर मद्रास के नीचे से भी लोग आते थे, इधर देहरादून उत्तर में देखो तो देहरादून और सहारनपुर वगैरह में से लोग आते थे और राजस्थान आदि में से भी आते थे, मध्य प्रदेश से आते थे, यूपी से आते थे, महाराष्ट्र से आते थे, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, कोई ऐसा प्रांत बाकी नहीं रहा जहाँ से नहीं आते थे, बंगाल से आते थे, आसाम से आते थे, कोने कोने से लोग आने लगे, हजारों की तादाद में लोग आने लगे थे। जो चार ही थे उनके पीछे, उसके पीछे हजारों की तादाद में आने लगे। पुण्य योग था। तो कहते हैं कि ग्रहण करने के बाद मार्ग मिलता हो तो भी उस मार्ग को ग्रहण नहीं करता है, वो जीव दुर्लभ बोधि है। कैसे है? दुर्लभ बोधि है, सही बोध को अंगीकार करने वाले नहीं हैं। जो सुलभ बोधि होते हैं वो तो बोध को अंगीकार कर ही लेते हैं और बोध को अंगीकार करने में किसी भी कीमत चुकानी पड़े तो चुकानी चाहिए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे आत्मकल्याण करना चाहिए। क्यों? कि जगत में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जो आत्मकल्याण के सामने तोलन करने में तोली जाए, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। है ही नहीं। ये तो अनुपम पदार्थ है धर्म, तो इसके कोई उपमा भी नहीं दे सकते। अमूल्य है, जिसका मूल्य कोई टर्म में नहीं कर सकते, नो टर्मिनोलॉजी, कोई है ही नहीं। देह अपना शरीर से का कोई कीमत नहीं इसके आगे, आत्मा के कल्याण के आगे अपने शरीर का भी कीमत नहीं है, तो फिर किसी चीज का कीमत होगा बताइए। ज्यादा से ज्यादा क्या लोगों को प्रिय क्या होता है? अपना देह, इससे आगे नजदीक कोई नहीं है, इसका इससे ज्यादा किसी का मूल्य नहीं है। तो वो भी जो न्योछावर कर सकते हैं, तन मन धन सब आ गया उसमें, सब कुछ आ गया, वो जो न्योछावर कर सकते हैं वही धर्म को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे का काम नहीं है। क्योंकि इतनी वो उत्कृष्ट चीज है कि संसार के सभी दुख और क्लेश से वो मुक्त कराता है धर्म, और अनंत सुख और अनंत ज्ञान को प्राप्त कराता है। बताइए इसकी बराबरी में कौन चीज है? अरे जगत में टेंशन की कोई दवाई नहीं है, शरीर रोग की दवाई है, टेंशन की कोई दवाई नहीं है। कोई भी आदमी टेंशन में आता है, बात खत्म, उसको कोई मुक्त नहीं करा सकता सिवाय सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान के सिवा इनको कोई मुक्त नहीं करा सकता, क्योंकि उसमें समाधान मिले तब तो शांति होवे ना, वो सच्चा ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता। तो ये मार्ग, ये उपाय, ये इलाज एक वितराग दर्शन में है, ज्ञानी के मार्ग में है, और कहीं जगह है ही नहीं। मति की न्यूनता, न्यूनता मैंने क्षति, खामी, मति दोष होने से, मति की न्यूनता होने से, क्षति होने से किसी को कोई बात सच्ची लगती है, किसी को कोई बात सच्ची लगती है। सच है वो तो एक ही प्रकार का होता है, दो प्रकार का हो ही नहीं सकता। एक ही बात में वो भी सत वो भी सत, वो तो बन ही नहीं सकता। लेकिन मति की क्षति के कारण से कोई इसी को दूसरे रूप में लेते, कोई इसी को दूसरे रूप में लेते, कोई दूसरे रूप में लेते हैं। छठा, जिस पर राग हो इसकी इच्छा अनुसार प्रवर्तन करने वाले अनेक मनुष्य। क्या होता है? व्यक्ति राग होता है। व्यक्ति राग के कारण से इसकी इच्छा अनुसार प्रवृत्ति करना, एक से अधिक मनुष्य निकलता है तो वो संप्रदाय अलग हो जाता है कि हम तो उसको मानेंगे, हमारे वो धर्म के नेता है, वो कहेंगे वो हमको मान्य है, दूसरा कहेंगे वो मान्य नहीं है। वो तो क्या है कि वहाँ गुणानुराग नहीं रहा, व्यक्ति राग रहा। वो व्यक्ति राग से गुण नहीं देख सकते। तो क्या है? ज्ञान पर एक आवरण आ गया। क्या हुआ? व्यक्ति राग के कारण से ज्ञान पर आवरण आता है, और वो गुण अवगुण को सही रूप में जान पहचान नहीं कर सकते, तो फिर गड़बड़ हो ही जाती है। दुष्म काल, यहाँ ऐसे ही जीवों का जन्म होता है जिसकी वृत्तियां अच्छी नहीं होती है। नीच वृत्ति वाले जीवों का यहाँ प्राबल्य रहता है, बहुभाग रहता है। आज क्या हुआ, बोलते हैं लोग कि भाई डेमोक्रेसी का जमाना है, तो धर्म के क्षेत्र में भी डेमोक्रेसी होना चाहिए, बहुमति हो, ऐसा ही हो। हाँ, तो क्या ज्यादा लोग धर्म में समझते हैं? कि धर्म में समझने वाले तो इन्हे गिने ही होते हैं, ज्यादा ज्यादा लोग तो ना समझ होते हैं। और बात ऐसी चलती है कि ज़्यादा लोग ना समझे उसकी मानो, वो कहे वैसा करो, समझदार लोग कम है उसकी मानो नहीं और वो कहे वैसा नहीं करो, ये बात हो गई है। तो ये संप्रदाय में पूरी गाड़ी उल्टी चलती है। क्या चलती है? गाड़ी पूरी उल्टी चल रही है। हर जगह डेमोक्रेसी के नियम लागू करते हैं, हमारे जो ट्रस्ट डीड बनते हैं ना, ट्रस्ट डीड बनते हैं, इसमें भी 5, 7, 10 या 7 या 11 कोई 15 ट्रस्टी लिखे जाते हैं, फिर उसमें नियम लिखना पड़ता है कि कोई डिसीजन लेना हो तो कैसे लेना, तो कि बहुमति के अनुसार डिसीजन लेना। क्या आएगा? बहुमति के अनुसार। धर्म के क्षेत्र में बहुमति नहीं चले, धर्म के क्षेत्र में तो ज्ञान की आज्ञा चले, बाकी कुछ नहीं चले। चाहे उनको ऑटोक्रेसी कहो तो ऑटोक्रेसी बोल दो, लेकिन वो एक यहाँ डेमोक्रेसी की बात इष्ट नहीं है, अनिष्ट है, उचित नहीं है किंतु अनुचित है, ऐसी बात है। हम एक बात देख लेते हैं कि हमको चेस्ट पेन हो गया, तो हम समाज की मीटिंग करेंगे क्या कि भाई बहुमत क्या है, हम हमको क्या करना चाहिए? हैं, जैसी बहुमति है ऐसा हम काम करें, ऐसा करते हैं हम? ये देखते हैं कि जो टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, हमारे गांव में या हमारे देश में या इस विश्व में, अभिप्राय में क्या हुआ कि जो अच्छे से अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं इनके पास जाना चाहिए हमें। उसमें हम किसी की मानते नहीं और सुनते भी नहीं, क्यों? कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, इसी कारण से हम दूसरों की सलाह को नहीं मानते। जबकि धर्म है वो व्यक्तिगत मामला नहीं मानते लोग, आखिर में है तो व्यक्तिगत, दुर्गति में जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे और मोक्ष में जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे। हाँ, मरेंगे तो अकेले, जिएंगे तो भी अकेले, दुख प्राप्त करते हैं तो अकेले भोगते हैं, सुख होता है तो भी अकेले को होता है। फिर भी हमारी ना समझ से धर्म के विषय में हम उसमें कौन एक्सपर्ट है वो नहीं देखते कि भाई उनकी मानो। ज्यादा लोग क्या कहते हैं ऐसा करो, जो समाज कहते हैं ऐसा करो, ये सब उल्टी गड़बड़ है, सब विपरीतता है। और इस विपरीतता के कारण से जैन धर्म की पड़ती हुई अवनति हुई, इसी कारण से हुई है कि हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी हमारी बुद्धि को हम खो बैठे हैं। है तो बुद्धिमान लेकिन इस विषय में तो हमारी बुद्धि सुलटी नहीं चलती किंतु उल्टी चलती है, तो इसका फल भोगते हैं आजकल। ये मति की न्यूनता हुई और जिस पर राग दुष्म काल है, और ज्यादा लोग ऐसे ही आते हैं, पैदा होते हैं, और शास्त्र ज्ञान का घट जाना, कम हो जाना, शास्त्र ज्ञान ही नहीं रहा, कोई शास्त्र पढ़ते ही नहीं। जबकि जिनागम को देखते हैं तो एक एक शास्त्र रत्नों की खानी है। क्या है? रत्नों की खानी है, लेकिन हमको इसका कीमत नहीं है, हमको इसकी कीमत नहीं है, इसलिए हम पढ़ते नहीं। पढ़ने के लिए हमारे पास समय भी नहीं है, क्योंकि हमको इसकी कीमत नहीं आई, कीमत नहीं रही। दूसरों के घर में, अन्य संप्रदाय वालों के घर में, विश्व में ये संपत्ति है ही नहीं, और जिसके पास है उसको कीमत नहीं। देखो कैसा दुष्ट काल है। हम जर्मनी गए थे, वहाँ एक रमेश जैन करके एक सिटी में जाना हुआ, इडार ऑफ इडार करके एक सिटी है, इडार ओबरस्टेन करके सिटी का नाम है। पता लगा कि हम गए, एड्रेस तो मिला, तो चारू कीर्ति जी जो थे ना मुड़बिद्री में, उन्होंने एड्रेस दिया था, तो कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस तो यहाँ से जाने के पहले कर लिया था। फिर हम मिले तो हमने बोला कि इस काम से हम आए हैं, तो बोले कि जैन ऐसा काम नहीं करेगा। और उसको मालूम नहीं था कि हम जैन नहीं हैं, हम अन्य मत में से आए हैं, वो उनको मालूम नहीं था, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट राइट था कि हमारे दिगंबर जैनों में कोई मूल्य है ही नहीं, हमारे ग्रंथों का मूल्य ही नहीं रहा है, इसलिए वो लोग ऐसा काम करते ही नहीं, जो करेंगे वो बाहर से आने वाले ही करेंगे, क्योंकि उसको इसका मूल्य आता है। फिर हम बोले कि बात तो आपकी ठीक दिखती है। ऐसा ही हुआ है, करीब 200 साल से हमारे ग्रंथ वो लोग ले गए, जर्मन लोग भी ले गए, फ्रांस के कुछ लोग भी ले गए, और ब्रिटिशर लोग भी, यूनाइटेड किंगडम में भी जगह जगह अपने शास्त्र पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड में है, कैम्ब्रिज में है, ब्रिटिश म्यूजियम में है, वेलकम यूनिवर्सिटी में है, बहुत सी जगह हैं, और भी एक प्रकार जगह हैं। तो 200 साल में किसी ने इतनी दरकार नहीं की कि हमारे कौन से शास्त्र वो लोग ले गए, देखे तो सही, और उसमें कुछ हमारे वहाँ नहीं उपलब्ध है, वैसे भी वहाँ है कि नहीं है, इतनी दरकार एक आदमी ने भी नहीं की। वो तो बोले कि यू आर द फर्स्ट पर्सन कि इस काम से इधर आए हों विदेश में, अभी तक तो कोई नहीं आए, 200 साल में ये शास्त्र आए, लेकिन 200 साल में एक आदमी भी इस काम के लिए इधर नहीं आए हैं, जबकि उन लोगों को बहुत मिला है, इसमें से बहुत ही चीज मिली है, क्योंकि हमारे शास्त्र में तो दोनों सब बातें हैं, शरीर विज्ञान तबीबी विज्ञान भी है, मेडिकल साइंस भी है, ज्योतिष शास्त्र भी है, और उसे सब भौतिक शास्त्र भी है, मैकेनिकल है, रासायनिक है, गणित शास्त्र है, सब कुछ है, और आध्यात्मिक शास्त्र भी है, आध्यात्मिक विद्या भी है, सभी प्रकार की विद्या हमारे शास्त्र में है, क्योंकि तीर्थंकर के वाणी में तो सब बात आई थी, वो तो सर्वज्ञ थे, तो सब बात की प्रसिद्धि उन्होंने की, सब बात आचार्यों ने गणधरों ने लिखी, और सब बात आई, उन लोगों ने अपने मतलब की बात ले ली, और बहुत तरक्की भी की। हिटलर तो सारी दुनिया को जीतने को निकल गए एटम बम बना करके, ये हालत हुई, जबकि इसका पुण्य उतना नहीं था, वरना तो उसके पास जो बम था वो दुनिया में किसी के पास नहीं था, और सबको उसकी शरणागति स्वीकार करनी पड़ती थी, ये बात थी। तो उन लोगों ने दरकार की हमारी चीज की, हमको दरकार नहीं हुई, वो तो बात उन्होंने कही, उन्हें तो काफ़ी चिट्ठी आ गया था उसका, आप हमारे घर ठहर सकते हो, हमारे यहाँ खाना खाना, और आपको बाहर जाना हो तो हमारे यहाँ से टिफिन ले जाना, सब कुछ आप कर सकते हो, हम आपको पूरा कोऑपरेशन देंगे, ऐसा करके। लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो चोरी हो गया ब्रीफकेस, उसमें उसका एड्रेस टेलीफोन नंबर सब चला गया, फिर इनडायरेक्टली पीछे एक हफ्ता 10-15 दिन बाकी रहा तब उसका पता मिला, टेलीफोन नंबर भी मिला, फिर एक दिन हम मिलने के लिए चले गए। बोले कि आप रुक जाओ हमारे यहाँ, हम बोला कि अभी तो इतना टाइम नहीं है, हमको तो एक दो दिन में बर्लिन जाना है, आपका एरिया छोड़ देना है, हम उसी एरिया में थे, तो इस वक्त तो नहीं आएंगे, आइंदा आप जब आएंगे मौका मिलेगा तो आएंगे, इस वक्त तो हमारे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन आपको मिलना जरूर था तो मिल लिया, ऐसा कर। मतलब क्या है कि शास्त्र ज्ञान घट गया है, इसका यही कारण है कि इसमें जो अमूल्य चीज है, विश्व की सर्वोत्तम चीज है, वो हमको मालूम नहीं और हमको दरकार भी नहीं है, ये बात हुई है। इसलिए हमारे यहाँ मत विभिन्न मत हो गए, विभिन्न मत मतांतर होने से झगड़े टंटे भी हो गए, और इसमें हमने बहुत कुछ हमें अपने आप को नुकसान कर दिया है, अपनी शक्ति को वहाँ खर्च कर दी। जो शक्ति कंस्ट्रक्टिव पद्धति में काम में लगनी चाहिए, वही शक्ति डिस्ट्रक्टिव पद्धति में काम में लग गई तो क्या होगा, वही होगा, ऐसी बात बनी है। अब कृपालु देव आगे क्या लिखते हैं वो कल के स्वाध्याय में लेंगे। धन्यवाद।